राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 मार्च 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो अच्छी चीज दान में पुण्य में बढ़िया चीज लगाओ तब भी चीज कृष्ण चलेगी। तो परलोक के लिए अच्छा काम करो, दान पुण्य अच्छा करो, श्रेष्ठ काम करो जिससे कल्याण हो जाए तो अपने उद्धार के लिए मौका है। मनुष्य जन्म मिला है ये भगवान ने कृपा करके दिया है, इनका उपयोग भगवान के चरणों में लगाओ। मीरमय श्रेष्ठ क्यों हो गए? गिरुवर का गुण गाया, भगवान की गुण गाए, आज पूजनी आओगी। मीरा जाई मेर तर तर्म तरना इसी तोड़ राम भक्ति कारण सकल सृष्टि मोड़ घड़ी हुई। मीरा मेरे ससुर नाम क्या था वो जाने पदम उदर नाम आ गयो जन्म नाम रोजना जाने तो मीरा मेरे नाम सब जाने नाम नाम भी ना रहे सुनो सयाने लोग मेरा सुत जायो नहीं शिष्य मोनियो कोई कितना नाम होता है। हम लोग चंद्र में चेला हो जाएगा हमारा नाम रह जाएगा, ये लोग हमारे सोरा हो जाएगा नाम रह जाएगा, तीन चार पहले पीढ़े नाम थे ही गुजारे कहीं नाम रह जाएगा। ऐसे भगवान के भक्त करने से मीरा सुत जायो नहीं ऐसे शिष्य मोनियो कोई कोई बेटो भी नहीं हो और चेलू भी नहीं हो। नाम कितने आदर से लिया जाए तो कोई बेटा पोता गए चेला हुआ नाम इतने आदर से नहीं लिया जाए। इस वास्ते भगवान में लग जाओ। तो बात ये कही कि हमने कहा भी है सुना भी है पढ़ा भी है आप लोगों ने भी मनुष्य जन्म मिला है दूसरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो उसमें हमने गीता गाओ भगवान के नाम गाओ भगवान के गुण गाओ भगवान का भजन करो सच्चे हृदय से लग जाओ और सुना दे भाई थोड़ा कीर्तन
और सुना है और पढ़ा है कि ये मनुष्य शरीर केवल जीव के कल्याण के लिए मिला है। किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी देश का हो किसी वेश में हो भाई हो बहन हो कोई व्यक्ति हो केवल अपना कल्याण करने के लिए शरीर मिला है। इसका फल दूसरा कुछ नहीं है। ये तन कर फल विषय न भाई संसार का सुख भोगना इस शरीर का फल नहीं है। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ स्वर्ग वो स्वल्प अंत दुखदाई क्षीण पुण्य मृत्यु लोगों में संधि वहां सुख भोग के लिए समय जो मिला है उस सुख उस पुण्य का भाग जो सुख रूप भोग करने के बाद पेड़ पीछा मृत्यु लोग में आना पड़ता है। मरना पड़ता है। तो वो भी अंत वाला है, कोई अनंत सुख नहीं है। तो ये सुख लिए, सुख के लिए मानव शरीर नहीं है। वो आनंद प्राप्त करना है कि जिसकी प्राप्ति के बाद उससे बढ़कर कोई आनंद हो ही नहीं, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी वो विचलित किया नहीं जा सकता। ऐसे सुख प्राप्ति की अभिलाषा को लेकर के मनुष्य का जन्म हुआ है। ये भगवान की तरफ से उद्देश्य पहले बना है और जन्म पीछे हुआ है। तो उसकी सिद्धि के लिए सबको यत्न करना है। उनके लिए एक बात बताऊं, आप विशेष ध्यान दें। जिस उद्देश्य सिद्धि के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसकी सिद्धि के लिए सामग्री भी मिली है, योग्यता भी मिली है, अधिकार भी मिला है, बल भी मिला है। सामग्री कम नहीं रखी है भगवान ने। परम दयालु परमात्मा जब अपनी प्राप्ति के लिए मानव शरीर दे, तो क्या अपनी प्राप्ति के साधनों से रहित करेंगे? जिनसे वो परमानंद की प्राप्ति हो सके, वो सब सामग्री भी प्रभु ने कृपा करके दी है। वो सामग्री चाहे सुख रूप हो चाहे दुख रूप हो। ये जो सुख दुख दो रूप से जो परिस्थिति आती है, ये संपूर्ण जीवों के तो पूर्व के किए हुए पुण्य और पाप को लेकर आती है, परंतु मनुष्य शरीर परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें जो सामग्री आती है वो सुखदायी अथवा दुखदायी दोनों ही साधन सामग्री है। सुखदायी सामग्री का भी उपयोग करने से मुक्ति होती है, और दुखदायी सामग्री भी मिली है उसका सदुपयोग से मुक्ति होती है। यहाँ जो परिस्थिति मिली है वो केवल कल्याण के लिए मिली है। पुरुष विचार करते हैं कि हम कहाँ अधिकारी होंगे, इसका जिसका कल्याण हो जाए, उस तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसे हम अधिकारी कहाँ है? ऐसा भाव कभी नहीं जाना चाहिए। मनुष्य शरीर का निर्माण ही उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो हम ऐसी कायरता क्यों लावे? क्या परमात्मा अनजान है? क्या उन्होंने बेसमझी से नींद में ही मनुष्य शरीर दिया है? क्या ये उनकी भूल है? ये संभव नहीं है। जो आपको समय मिला है, जो आपको सामग्री मिली है, जो आपको शक्ति मिली है, और जो आपको सामान मिला है, समझ मिली है, वो सबकी सब केवल मुक्ति के लिए है। उनका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, ये स्वतंत्रता दी है। क्यों दी है स्वतंत्रता? मनुष्य जन्म से आगे सब तरह के जन्म होते हैं। ये जन्म संसार का आदि जन्म है। नरक स्वर्ग अपवर्ग मिशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, इस मानव शरीर की महिमा वर्णन करते हुए गुरु जी से काकभूषण जी कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग नरक और मुक्ति की निशेनी है, ऊपर चढ़ने के लिए निशेनी होती है, जिसको अपन मिश्रणी कहते हैं, मिश्रणी निशेनी, मिश्रण करने के लिए, निगलने के लिए जो हो परंपरा सोपान परंपरा है उसको कहते हैं निश्रेणी, तुझे निकलने के लिए है। और ये बात भी याद रखो कि नीचे जाए तो भी निश्रेणी से जाया जाता है, उसका नाम तो निश्रेणी है, उसका नहीं पढ़ने की है, पढ़ने के लिए नहीं। और नरक स्वर्ग अपवर्ग नीचे नहीं, तो स्वर्ग नरक नरक है वो नीचे की तरफ जाने के नीचे नहीं है, और स्वर्ग ऊपर जाने के नीचे नहीं है, और अपवर्ग को भी नीचे नहीं कहा है। परंतु जहां मनुष्य जन्म की विशेषता से महिमा गाई है वहां कहा है साधन ध्यान मोक्ष कर द्वारा। साधनों का तो ये घर है, ऐसी परिस्थिति मिली है, जैसे सामान मिला है, जैसी समझ मिली है, जितना समय मिला है, सबका सब कल्याण करने के लिए है। इस बात से साधन धाम बाल बुद्धि योग्यता वर्ण आश्रम शरीर में स्त्री पुरुष आदि जो मिला, और स्वर्ग में जाने के लिए चढ़ना पड़ता है। परंतु ये मोक्ष कर द्वारा दरवाजा है तो मुक्ति में सीधे चले जाओ। अर्थ क्या हुआ, नरक में जाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और स्वर्ग में जाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए सीधा दरवाजा साफ चल जाओ, न ऊपर चढ़ना है न नीचे बढ़ना है। भगवान ने साफ कहा, मामे कम शरण मर जा अहम था सर्व पापे भी मोक्ष ईर्ष्या में, तेरा अहम समुद्र का मृत्यु संसार सागर भवामी मुसरात पार्थ मैया विशिष्ट देवता, मेरे शरण हो जा, मेरे में चित लगा दे तो बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूँ। तो यहाँ तो सीधा मारे गए परमात्म की प्राप्ति का, उस दरवाजे पर हम आए हुए हैं। इस वास्ते गीता ने वो विशेष करेगा, अष्टधाना अष्टधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमाने। विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसकी महिमा में आठ बातें गई है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखो और अव्ययम सुसुखो कर्तुम, सात विशेषण दिए है। आत्मा का कर्तुम सुसुखम, करने में बड़ी सुख है, आठ विशेषण देकर कहा अष्टधाना अष्टधाना पुरुषा, इस मेरे धर्म पर श्रद्धा विश्वास न करने वाले वे पुरुष माम अप्राप्य मेरे को प्राप्त न हो करके और मृत्यु संसार संसार वर्तमान ही निवर्तन थे। संसार कैसा रास्ता है, ये मौत का रास्ता है, केवल मौत। मौत कहने का तात्पर्य दुख है, केवल दुख। मेरी प्राप्ति का अवसर मिला उसको मृत्यु का मार्ग ले लिया, उस छोड़ करके उस अवसर को छोड़कर अप्राप्य काम मेरे को प्राप्त न हो करके, यही भगवान आखिर संपत्ति के लिए कहा है। माम अप्राप्ति वो कौन थे तथो जानती अधमान गति, आखिर संपत्ति का वर्णन किया है। वहां वर्णन करते हुए तानहं दुष्टर क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपां यजसं अशुभान आश्विषेव योनिषु, उनको मैं आश्विष योनि में गिराता हूं। आश्विष योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में हरेक जन्मों में आश्विष योनि को प्राप्त हुए मूर्ख माँ बाप प्राप्ति मेरे को प्राप्त न हो करके तो जानते हैं तो उससे भी अधम गति चले जाते हैं। या थोड़ा सा ध्यान देना है, आश्रिम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्ति, तो आश्रिम योनि को प्राप्त हुए मूर्ख जन्म जन्म में दुख पा करके और मेरे को प्राप्त न होकर अधम गति को चले गए। थोड़ा ध्यान दो, मूढ़ा जन्मनि जन्म जन्म में ऐसी योनि को आसुरी योनि को प्राप्त होकर के और तथा उससे भी अधम गति को चले जाते हैं। तो आसुरी योनि तो है योनि विशेष नरक, कीट पतंग बिच्छू सांप गोईरा आदि ऐसे लोगों को प्राप्त करके फिर तथा उससे भी अधम गति जो ये नरकों के कुंड है, असी पत्र बन है, ताला बक्स है, सार में आगन है, दंड सूख है, ऐसे बहुत से नरक है, वे तथा अधि उस नाश योनि से भी अधिक दुखदायी है। इसको भगवान ने कहा पतंती नरके सुतौ अशौचौ नरके पतंती, अशुद्ध नरकों में गिरते हैं। तो क्या क्या नरकों में भी शुद्ध अशुद्ध दो भेद है, जो अशुतौ नरके अशुद्ध नरकों में, तो वो शुद्ध नरक कौन से हैं भाई? तो अशुतौ कहने का शुद्ध नरक कहने का तात्पर्य नहीं है, नरकों में भी महान दंड होता है जिसमें महान कष्ट होता है, महान विशेष घोर यातना होती है, ऐसे नरकों में जाते हैं। योनि विशेष नरक तो पहले देखता हूं, फिर भी उनसे भी अधम गति को जाते हैं। योनि विशेष नरक में तो मांग ही पार्थ व्यापार सृजे ये भी इसको पाप योन या पाप योनि है भी मेरे को प्राप्त हो सकते हैं, ते भी अंति पराम गति, परंतु वो पाप योनि में ही नहीं चलते तो उससे भी अधम गति को जाते हैं। तो मां अप्राप्य शब्द कहा कि जो मेरे को न प्राप्त होकर के इसका तात्पर्य होता है कि मेरी प्राप्ति का मौका है। तो मौका प्राप्त किसको? यहां प्रसंग है आश्रय संपत्ति का, प्रवृत्तिन जय निवृत्तिन जय जनाना विधिरासुरा, आश्रय प्रकृति वाले प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन बातों को नहीं जानते। तो आश्रयों में ऐसे नहीं जानते, वे भी अगर भगवान में लग जाए पाप योनि का, ते भी अंति परम गति, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य योनि है और जितने हैं सबको भगवान ने अपनी प्राप्ति को सुलभ बताया है। नहीं तो माम अप्राप्ति कैसे हो सकता है मेरे को प्राप्त न होकर के? तो ये जो प्राप्त न होकर के कहना है, इसका प्राप्त करने का अधिकार है। एक नियम है, प्राप्तो सत्याम निषेधा, प्राप्ति होने पर निषेध होता है, प्राप्ति न होने पर निषेध होते भी नहीं। प्राप्ति नहीं निषेध क्या, तो माम अप्राप्य प्राप्ति अप्राप्य नहीं प्राप्त होकर के तो अधमांगति इसे सिद्ध किया हुआ सिद्ध किया ये हुआ कि बड़े बड़े दुराचारी पापी वे भी मनुष्य को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इतना नहीं, पापी होने वाले भी अगर लग जाए तो भालू है, बंदर है, तीर है, आदि आदि जो पापी होनी है वे भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। कितनी विलक्षण बात है, ये भी जानते प्राणी तुम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राधर्श तथा ब्राह्मणा भक्ता राधर्श भक्ता भक्त बीच में दिया। पवित्र ब्राह्मण और राजन राजा के जन्म क्षत्रिय एक ही रूप, तो ब्राह्मण और पवित्र आचरण हो, क्षत्रिय जन्म हो, ऋषि जन्म हो, तो दोनों तरह से आचरण और श्रेष्ठ होने से तो ब्राह्मणा पुण्य बताया और जन्म से श्रेष्ठ होने से ब्राह्मणा बताया और राजन शब्द से श्रेष्ठ कुल बताया और ऋषि से उनके आचरण अच्छे बताए। तो जिनका जन्म भी श्रेष्ठ है और आचरण भी श्रेष्ठ है, तात्पर्य पहले किए हुए पुण्यों के कारण से ऊंचा जन्म हुआ और यह जन्म लेने पर भी आचरण बड़े पवित्र है, उनके कल्याण में संदेह क्या है। क्यों, पहले के भी पुण्य है, यहां भी पवित्रता है, तो भी मेरे को प्राप्त हो जाए सुगमता से, इसमें संदेह क्या है। इस वास्ते अनित्य मसुगम लोगों प्राप्य भजस्वमा, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये अनित्य है, न जाने कब प्राण पकड़ उड़ जाए, पता नहीं है। जब बालक अपने माँ के पेट में आता है उस दिन से लेकर 100 वर्षों की उम्र तक कोई ऐसा वर्ष नहीं है कि जिसमें मरने की रीत न हो, और वर्ष में 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं है कि जिसमें मरने की रीत न हो। मानो मृत्यु का दरवाजा कोई बंद रह जाए, ऐसी बात नहीं है। और दिन में 24 घंटा होते हैं, उन 24 घंटों में कोई ऐसा घंटा नहीं कि जिस घंटे में मरने की दहशत न हो। अगर ऐसा कोई घंटा हो, कोई ऐसा दिन हो, जैसे भी रविवार है, आज तो तरफ दफ्तर बंद है, ऐसे मौत बंद का कोई दिन हो तो बताओ भाई, इस दिन तो हो कारखाना नहीं चलता है, बंद है ही नहीं, ऐसे कोई घड़ी नहीं है, और घड़ी नहीं है तो मिनट भी नहीं है भाई। एक घड़ी में 7 मिनट होते हैं, उनमें कोई ऐसा मिनट भी नहीं कि जिसमें मरने का भय न हो। ऐसा हो भी इस मिनट में तो मेरे भय रहो, मरेंगे नहीं, और मिनट में सेकंड भी ऐसा नहीं कि सेकंड में नहीं मरता आदमी, मौत बिल्कुल खुली। इस वास्ते भगवान का संसार वर्तमानी, मृत्यु संसार वर्तमानी, संसार का रास्ता क्या है, मृत्यु है। उद्धार करने की बात कही वहां भी मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार सागर, संसार सागर के मौत ही मौत, कोई मौत ही मौत, मरना ही मरना, ऐसे समझने में उद्धार करता हूं। तो मौत जो भी संसार का जो रास्ता है, उस मौत के रास्ते ही चले जाते हैं। अप्राप्य मांग निवन बनते मृत्यु संसार वर्तमान, और मां अप्राप्य कौन थे तो वे अगमान गति। मानो भगवान इसके लिए चिंता करते हैं। एक कवि ने कहा है, करते किए को सोच करता करतु है। भगवान ने मनुष्य ले लिया, अब वे नरकों में जाते हैं तो उनका सोच करते हैं, भगवान मैंने क्या मौका दिया था, क्या कर रहे हैं ये। करते किए अपने हाथों से बनाए मनुष्य ही, क्या भला कल्याण करोगे, अब वे अपना कल्याण न करके नरकों में जाओगे। तो भगवान कहते हैं, मेरा मनुष्य शरीर बैठना क्या फायदा हुआ। कब हो कि करी करुणा नर दे ही, देत इस बिन इस समय ही। ये सब फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ऐसे भ्रमते भ्रमते कब हो कि करी करुणा नर दे ही, देत इस बिन हेतु सने ही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु, बिना कारण कृपा करने वाले भगवान, ये भगवान का विशेषण दिया। बिन हेतु स्नेह ही ऐसे परमात्मा करुणा करी, फिर कृपा करके डबल कृपा हो गई। ये तो कृपा करने का स्वभाव है, और ये करी कृपा कर कृपा करके मनुष्य ही देखते हैं। तो डबल कृपा करी, उसमें भी जाकर फिर नरकों में चले जा, तो इसकी चिंता होती है भगवान को कि मैंने क्या तो अधिकार दिया था और क्या प्राप्ति करी। अधिकार दिया था कल्याण का, उद्धार का, और आशु योनि में गए फिर नरकों में गए, क्या किया हमने। तो भाइयों बहनों सोचो, ये मौका केवल उद्धार के लिए मिला है। इस वास्ते मनुष्य को सतर्क होना चाहिए। कितने गीता में लिखा है, नवाम दुष्कृति में मूढ़ा प्रपंचे मेरा अधम। जो मनुष्यों में अधम है और दुष्कृति है, मेरे शरण नहीं होते। तो जो भगवान ने स्वभाव बताया, इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई पाप करने किया है पहले पाप योनि है, ऐसे पापी मेरे तरफ आ नहीं सकते, ये नहीं है। वे शरण होते नहीं, परंतु अगर शरण हो जाए तो निषेध नहीं है। नवाम दुष्कृति नो बूढ़ा प्रपद्यंते चतुर्विधा भजनते माम जना सुकृति न। पुण्यशाली तो मेरा भजन करते हैं, पापी मेरा भजन नहीं करते। इससे एक बात सिद्ध होती है, भगवान का भजन नहीं करना यही पाप है बड़ा भारी, और भगवान के भजन में लग जाना यही बड़ा भारी पुण्य है। ये अर्थ निकल। एक संत ने लिखा है कि डेड पाप है डेड पुण्य है। डेड पाप कौन सा, जो भगवान से विमुख होते ही तो पूरा पाप, और अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, कपल करते हैं, अशुभ नशुभ चीजों का सेवन करते हैं, मदिरा मांस भक्षण करते हैं, ये चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये आधा पाप, और पूरा पाप भगवान से विमुख होना। ऐसे पुण्य पूरा क्या है, चतुर्विधा भजन देवना सुकृति न। ये शांत पंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम, जन पुण्य कर्मा जीवोगे पाप नष्ट हो गए हैं वे दड़बे का दड़बे थोड़े मेरा वचन करते हैं। तो कोई ये कहे कि हमारे पूरे सुकृत नहीं है, हम दृढ़ होकर भजन नहीं कर सकते, ये अर्थ नहीं है। ये उनका स्वभाव बताया, पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन कहो भजन अच्छा नहीं लगता, पर भजन कर नहीं सकते ये नहीं है। मनुष्य मात्र अधिकारी है, कहते ये अर्थ करे, ये अर्थ भी तो जीता है कि नमाम दुष्कृति में मोड़ा मेरे दुकृति शरण नहीं होते पाप करने वाले। तो भगवान कहते हैं कि वे पाप करने वाले हैं जो मेरे शरण नहीं होते। पहले अध्याय में आया है, अर्जुन ने जब अपने बात को पुष्ट करने के लिए कहा, शोकाविष्ट होकर के वो कहता है महाराज बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये कुल क्षय हो जाए, कुल क्षय परिसंति कुल धर्मा सनातना, कुल के नष्ट होने से अनादिकाल से जो कुल धर्मों की परंपरा आ रही है वो परंपरा नष्ट हो जा रही, सनातना कुल धर्मा नष्ट नष्ट और फिर धर्म के नष्ट होंगे, धर्म नष्ट कुलंकृषम अधर्म भी होते, धर्म के नष्ट होने पर कुल को अधर्म आकर दबा लेता है, तो धर्म चला गया तो अधर्म आकर अपना कब्जा कर देता है। तो अधर्म है वो कब्जा करता है किन पर, भाई कुल को नष्ट हो गया और पीछे रहेगी स्त्री और बालक, युद्ध में पांच पीढ़ी लड़ती थी कौरों को, पांच पीढ़ी समझे, वाल्मीकि जो भीष्म जी की चाचा होते हैं, भीष्म जी कहीं बड़े, और भीष्म जी भी लड़ते थे, और भीष्म जी के छोटे भतीजे वो लड़ते थे, उनके पुत्र लड़ते थे पांडव विरुद्ध कौरव, और उनके पुत्र लक्ष्मण और कृष्ण क्या नाम अभिमन्यु दो द्रौपदी यात्र लड़ते थे, पांच पीढ़ी लड़ते थे। तो बाकी क्या बचा, जिस कुल को धर्म दबा लेगा तो बाकी बची स्त्रियां और बालक, स्त्रियों को इतना ज्ञान नहीं, बालकों को ज्ञान नहीं, तो अधर्म का मौका लग जाता है, जानने वाले मिल गए मर गए, कई अच्छी जानने वाली स्त्रियों सती हो गई जो धर्म को ठीक जानती थी वे भी नहीं रही। अब धर्म की बात बताओ कौन, तो अधर्म दबा लेता है, और अधर्म हो जाता है तो उसकी अब जो स्वभाव वाली हो जाती है, इनका स्वभाव में अपने धर्म में जो निष्ठा है वो इनकी नष्ट हो जाती है। प्रदर्शनती कुल स्त्रियां, कुल स्त्रियां कुलीन स्त्रियां घराने की, अच्छे घराने की स्त्रियां भी भ्रष्टाचार वाली हो जाती है, और भ्रष्टाचार भ्रष्ट होने से उनके वर्ण संकर पैदा होंगे, और वर्ण संकर है वो नरकों के लिए है, क्योंकि लुप्त पिंडों से क्रिया वर्ण संकर होते वो श्राद्ध नहीं करते, वो तर्पण नहीं करते, क्योंकि उनके माता पिता असली नहीं है, असली माँ बाप के हो तो दया आती है और कृतज्ञता भी होती है कि दिन से हम पल रहे हैं ये धन हमारे पिता प्रपितामा पितामा प्रपितामा का कमाया हुआ है, तो उनका कम से कम पिंडोरी पानी तो दे। पर जो वर्ण संकर होते हैं वो किसको बाप माने, किसको दादा माने, किसको परदादा माने, वे शब्द करते नहीं, और लोक लिहाजा करे तो उस वंश पर आम है वो मिलता नहीं, वर्ण शंकर का दिया हुआ पिंड पानी मिलता नहीं। लोट पंडो देख लिया तू भी नखों में बस जाते, नखों में जाते तू कुलग नाना अंकुल से था। भगवान बड़ी चिंता करते है जो कुल घाती है वही भी नखों में जाएंगे, और कुल जो बेचारा है अगाड़ी पर वो भी नरकों में जाएंगे, दुष्ट पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकट पैदा हो जाएंगे, किसी वर्ण की स्त्री किसी वर्ण की पुरुष उनसे पैदा होना वर्ण संकर। अरे को कह जा रहे वर्ण संकर तो उनको गुस्सा था, पर आज के तो गुस्सा नहीं करना चाहिए भाई। बैस करते दूसरे जन्म जन्म दूसरे वर्णों के साथ ब्याह करो तो वर्ण संकर बाप है भी, तो उनको वर्ण संकर कहने में कोई दोष नहीं। अभी तो तौल छाती कहते हैं हम वर्ण संकर पैदा करने वाले, वर्ण संकरता का प्रचार करने वाले हैं, तो वर्ण संकर ही होंगे, भले आदमी नहीं होंगे। अर्जुन घबराता है कि भले आदमी मर जाएंगे तो फिर भलाई भी उठ जाएगी, क्योंकि जो अपना वर्ण है आश्रम है अपना समुदाय है उसमें भले आदि में होने से ही तो वो वर्ण आश्रम भला होता है, भले आदि जिसमें नहीं रहेंगे वो आश्रम भला नहीं होगा। ब्रह्मचारियों में भले ब्रह्मचारी नहीं हो तो श्रेष्ठ ब्रह्मचारी नहीं हो तो ब्रह्मचारी क्या रहा, गृहस्थों में श्रेष्ठ गृहस्थ नहीं है तो गृहस्थ समुदाय डूब गया, वानप्रस्थों में भले ब्राह्मण वानप्रस्थ नहीं रहे तो वानप्रस्थ भले कहां से आएंगे, साधु संन्यासियों में भी भले आदमी नहीं होंगे तो साधु संन्यास भले कैसे होंगे। एक आदमी ने श्री शरणानंद से प्रश्न किया कि महाराज आजकल के साधु भले साधु नहीं है, अच्छे से साधु नहीं है, तो उन्होंने उत्तर दिया तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ आदमी साधु हो जाओ फिर साधु श्रेष्ठ हो जाएंगे, आप श्रेष्ठ आदमी साधु होते नहीं, एरे गेरे मत्थु खेरे यूं बोला करते हुए, एरे गेरे मत्थु खेरे वैसे बेचारे निर्दक आदमी निकम्मे आदमी आपके समाज के काम नहीं हो उन्हें साधु बन जाए। अब भले साधु कहां से आवे, साधुओं के जन्मते हो तुम तो कह सकते हो देखो तुम्हारे संतान अच्छा नहीं जन्मा, हमारे तो यूं आने वाले होते हैं आने वाले भले आदमी आते नहीं, फिर साधु भले कहां से होगा तुम्हें, तुम अगर भले आदमी साधु बन जाओ फिर नहीं कह सकते कि साधु भले नहीं है, बोलो साधु तो आप में से ही आते हैं, तो साधु जो बड़े अन्याय करते हैं, अन्याय क्यों करते हैं, पहले तो रहे खहे निकम में आते हैं जिससे हवा चलने पर वो फूस इकट्ठा हो जाए जो इकट्ठे हुए साधु हुए, और वे फिर खावे मुफ्त में माल तो बुद्धि और हुआ भ्रष्ट। अब अच्छा आदमी कहां से है बताओ, वो आया है ना मन पहला ना माल भेग भरोसे खाते मंत पहला का माल, भजन करे में बंदगी होशी कौन हवाल, कौन सी होशी कौन हवाल तो ही मैं कह दू पहला देवर ने नहीं मिले तो बैल वह बेला, लख चौरासी से कुछ जोन में रुतो पर कुचर कुचर ने कुचर सी रे तू हाल हाल है हाल भेग भरोसे खाते न मन पहलों का माल, साधु भिक्षा को जाए तो रद्दी रोटी देते रद्दी, ठंडी वासी हो तो उसको दे दो तो ठंडी रोटी भी निकल जाए बाबा भी निकल जाए, अब ठंडी रोटी है नहीं क्या करे तो फलकों से नीचे का फलका निकाले तो मूंगा मूंगा हो जाए, वो ये दो ये काम ही आ जाए बाबा भी चले जाए, ऐसा विचार कर आप देते हो दान पुण्य में भी चीज तो रद्दी रद्दी समझ कर देते हो। ये खेती करने वालों को पूछो ये खेती में बीज बोते हैं बढ़िया बढ़िया, बाजरी निकलती है तो पहले बोल रही बाजरी बढ़िया बढ़िया बाजरी, अपने बीज की बाजरी कहते भी ऐसा गा तो हमारा बीज ही बाजरी है। किसी आदमी को श्रेष्ठ कहना हो तो श्रेष्ठता का वर्णन है ये हमारे बीज ही बाजरी है और बढ़िया बाजरी होती वो तो दान पुण्य के लिए बढ़िया देते हैं और ये लग घटिया। दुकान पर जाकर के नारियल चाहिए सुपारी चाहिए बताओ ये नहीं नहीं पूजा वास्ते पूजा हाँ ठीक है रद्दी रद्दी सुपारी लेंगे रद्दी जाएंगे पूजा वास्ते चाहिए तो पूजा में बढ़िया सुपारी का निषेध है पैसा ज्यादा लग जा अब उनसे पूजा कैसी होगी दूख नारा तुष्या हुआ वो बाबाजन के साथ निपलेगा खेती वाले समझ में खेती करते हैं ना तो सिक्कियों को ला करके उनको गाते हैं बैलों से ऊंटों से फिर करके वो फिर उफलते हैं ऐसे तो हवा हवा से वो तूतरा होता तूतर उग जाता है और भारी भारी बीजी हो जाती है उनमें भी छोटे छोटे तिनके रह जाते हैं छोटे छोटे अंश सिट्टी के सिट्टी के छोटे अंश तो उसमें दाना रहता है कच्चा तो वे छोटे रह जाते हैं उसको डूख जाकर वह जब ये उसको बने ना उसे बाबर लेकर के सीढ़ियां लेकर के डूख जाए इकट्ठा कर दे डूख लिया था उनमें बाद निकले पतली पतली क्योंकि कच्ची बाजी है वो तो खेत बोने वाले डूखने वाली बाजी गए उनको वो तो बीज की बाजरी ये डूखने वाली बाजरी तो आप दान पुण्य करो डूखने वाली बाजरी अब खेत कैसे निकलेगी बढ़िया बीज जो रख दो मान में तो बढ़िया बढ़िया चीजों तो अच्छी रखो एक संतों पद्म आया है